दूसरा राजा अध्याय 18। अध्याय 18 में अब हम दक्षिणी राज्य यहूदा की ओर चलते हैं। दूसरे राजा की पुस्तक में उत्तरी राज्य का वर्णन लगभग खत्म हो गया है क्योंकि वो बंदुआई में चला गया है। अब हम दक्षिणी राज्य यहूदा का अध्ययन करेंगे जिसका राजा हिजकिय्याह है। अध्याय 18 पद 2 से लेकर 4 तक। अब वो हिजकिय्याह राज्य करने लगा, तब 25 वर्ष का था और 19 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इसराइली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुस्तान रखा। जब उसने राज्य संभाला, सबसे पहला काम जो उसने किया वो था अन्य देवताओं की मूर्तियों को हटाना और वे आराधनालय जो यहूदा के लोगों ने बना लिए थे उन सब को नष्ट करना। उसने इन सब से छुटकारा पाया ताकि वे लोगों को जीवित और सच्चे परमेश्वर की सच्ची उपासना में वापस ला सके। एक और रोचक बात है कि लोग एक मूरत बनाकर उसके आगे धूप जलाते थे, और वो थी पीतल का सांप जो मूसा ने जंगल में बनाया था। आपको याद होगा जब इसराइल की संतान परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाई तब परमेश्वर ने सांप भेजे और उन्होंने लोगों को काटना आरंभ किया और लोग मरने लगे। मूसा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा और प्रभु ने कहा, एक पीतल का सांप बनाकर छावनी के बीच में लकड़ी पर टांग दे, जो भी सांप का काटा हुआ पीतल के सांप को देखेगा वो चंगा हो जाएगा और जीवित रहेगा। यीशु ने एक उत्सुक यहूदी अगुआ के प्रश्न का उत्तर देते समय इसे एक दृष्टांत की तरह प्रयोग किया था। जब उसने पूछा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने इस प्रश्न का मैं कैसे नया जन्म ले सकता हूं के उत्तर में कहा, यूहन्ना 3 अध्याय 14 और 15 पर, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। इस तरह यीशु ने जंगल में इस पीतल के सांप का संदर्भ दिया कि वह उसके स्थान का प्रतीक था, जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर उठाया। पीतल सदा ही परमेश्वर के न्याय का और सांप पाप का प्रतीक है। लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने का पाप किया, इसलिए पीतल का सांप जंगल में खंभे पर एक प्रतीक था कि उनके पापों का न्याय किया गया है। यदि वे परमेश्वर के उपाय को देखें जो उसने बनाया है, अर्थात पीतल का सांप, और विश्वास करे तो सांप के काटने पर चंगे हो जाएंगे और जीवित रहेंगे। जैसे यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय का प्रतीक बना, और यदि हम केवल क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह की ओर देखें तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे और हम जीवित रहेंगे। इसलिए मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने से नया जन्म पाता हूं। यह है कि उसने हमारे सब पाप क्रूस पर उठा लिए। परंतु लोगों ने इस पीतल के सांप को लेकर एक वेदी और एक पूजा स्थल बनाया। वे उसकी उपासना करने लगे और धूप जलाने लगे। मनुष्य जब कोई मूरत बनाकर उसकी उपासना करता है तो उस मनुष्य के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। पहली बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि उसने अपनी चेतना खो दी है। जब भी मैं कोई मूरत बनाता हूं या आराधना का स्थान, तो इसका अर्थ है मैंने परमेश्वर की उपस्थिति की चेतना खो दी है और मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराए। ये आत्मिक अवचेतना का चिन्ह है। पौलुस प्रेरित कहता है प्रेरितों के काम 17 अध्याय 22 से लेकर 24 पद और 28 पद में, हे एथेन के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। पद 28 में, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। पौलुस को कोई मूरत नहीं चाहिए थी। वो परमेश्वर की उपस्थिति का इतना सचेत था कि वो चारों ओर से परमेश्वर से घिरा हुआ था। मैं उसमें जीवित रहता, चलता फिरता और स्थिर रहता हूं। मैं उसे बच नहीं सकता, वो मुझे हर समय चारों ओर से घेरे रहता है। यदि चेतना का ये स्तर हो तो किसी मूरत की आवश्यकता नहीं होती है। आपको किसी मूर्ति या किसी साज सज्जा की आवश्यकता नहीं कि वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति का बोध करवाए। मनुष्य को स्वाभाविक तौर पर आराधना के लिए कुछ चाहिए। मुझे कुछ देखना चाहिए, कोई चीज जो परमेश्वर से संबंधित हो। ये चेतना के खो जाने का चिन्ह है। दूसरी चीज जो मूर्तियां हमें बताती है वो ये है कि मनुष्य को वो प्राप्त करना है जो उसने खो दिया है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति की चेतना चाहता हूं और ये सब मुझे स्मरण कराने के लिए है, क्योंकि मैं किसी चीज के लिए तरसता हूं जो मैंने खो दी है, और वो है परमेश्वर की चेतना और जागरूकता। परमेश्वर की संतान इसराइल ने पीतल के सांप की एक मूर्ति बना ली। उन्होंने उसे पूजा की वस्तु बना लिया। वे उसके लिए धूप जलाते थे। फिर वही मूर्खता, रोमियो 1:25 पद, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हिजकिय्याह जब राजा के सिंहासन पर बैठा, उसने सब झूठे उपासना स्थानों को गिरा दिया। उसने इस पीतल के सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहा, नहुस्तान। नहुस्तान का अर्थ है पीतल की चीज। ये ईश्वर नहीं है, ये पीतल की चीज है। हम कैसे सांसारिक वस्तुओं से जुड़ जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं, मैं चर्च में इसी स्थान में बैठना चाहता हूं क्योंकि एक रात मुझे वहां परमेश्वर की उपस्थिति का आभास हुआ था। इस बेंच को कभी न हटाना। नहुस्तान, ये बेंच एक लकड़ी है। ये परमेश्वर की नहीं, भौतिक चीज है। ये परमेश्वर नहीं, नहुस्तान एक पीतल की चीज है। सेंट एंड्रूज कैथेड्रल मिलान इटली में जाना मनोरंजक है। वहां एक सुंदर पेटी में, जैसा वे कहते हैं, उन्होंने पीतल के सांप के टुकड़े को जोड़कर रखा है और उसके सम्मुख प्रार्थना की जाती है। परंतु वो नहुस्तान है, एक पीतल की वस्तु। ये महत्वपूर्ण है कि हम इन बातों को समझें। इन वस्तुओं के ऊपर आत्मिक शक्ति नहीं है, ये वो स्थान है जहां ये उपदेश मंच है, जिस पर से अनेक मनगढ़ंत विचार आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह हिजकिया ने व्यापक धार्मिक सुधार आरंभ किया। अध्याय 18 पद 5 से लेकर 7 तक। वो इसराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई राजा हुआ था। और वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता रहा, इसलिए यहोवा उसके संग रहा। जब हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में आते हैं, जब राजा आसा कूशियों की बड़ी सेना को जीतकर वापस आया, नबी उसे मिला और कहा, दूसरा इतिहास 15 अध्याय 2 पद, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला रहेगा, परंतु उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। हिजकिय्याह परमेश्वर पर आश्रित था, उसने प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया, उसने बिना शर्त के प्रभु को खोजा और वो उसके साथ रहा और प्रभु उसके साथ बना रहा। अध्याय 18 पद 7, और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था, और उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। अब आराम का राजा फिलिस्तीन के स्थानों में आया और उसने गाजा शहर को नष्ट किया और साथ में छोटे शहरों को भी जो उसके चारों ओर थे उन्हें भी नष्ट कर दिया। अध्याय 18 पद 9 से लेकर 14 तक। राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इसराइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अशूर के राजा शल्मनेसर ने शमरोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया, और 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में, जो इसराइल के राजा होशे का 9वां वर्ष था, शमरोन ले लिया गया। तब अशूर का राजा इसराइल को बंधुआ करके अशूर में ले गया, और हला में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उसे बसा दिया। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उसको टाल दिया, और ना उनको सुना और ना उनके अनुसार किया। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर का राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा के पास लाकिश को कहला भेजा कि मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तो मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किकार चांदी और 30 किकार सोना ठहरा दिया। दूसरे शब्दों में, वो सन्हेरीब के सम्मुख आत्मसमर्पण की भेंट ला रहा था। उसने हिजकिय्याह के लिए 300 किकार चांदी और 30 किकार सोना ठहराया था। अध्याय 18 पद 15 से लेकर 17 तक। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली उन सबको हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के किवाड़ों से और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिया ने सोना मढ़ा था, सोने को छीलकर अशूर के राजा को दे दिया। तो भी अशूर के राजा ने तर्तान, रबसरिस और रबशके को बड़ी सेना देकर आकिश से यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया। सो वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए, और वो सब दीवार के पास आए और हिजकिया के प्रधानमंत्री बाहर निकला और लोग पुकारने लगे। तब कहा, अध्याय 18 पद 19 से लेकर 22 तक, रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिया से कहो कि महाराजाधिराज अर्थात अशूर का राजा यूं कहता है कि तू किस पर भरोसा रखता है? तू जो कहता है कि मेरे यहां युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, सो तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तूने तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में छुप कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिया ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इस वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? देखिए, ऐसा लगता है कि वहां परमेश्वर यहोवा में विश्वास रखने वाले बहुत ही कम लोग थे। अशूर के राजा ने भी सोचा कि पूजा के वे सब स्थल यहोवा की उपासना के थे। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हम मसीह यीशु के भक्त हैं। तब रबशाके उनसे कह रहा था, फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वो नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिया ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? परंतु ऐसा नहीं था। हिजकिया ने यहोवा के उपासना स्थल नहीं थोड़े थे, उसने केवल अन्य देवी देवताओं की वेदियां गिराई थी। रबशाके ने आगे कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि हम क्या करेंगे। हमें कुछ धन दो और हम तुम्हें 2,000 घोड़े देंगे, और तुम ढूंढकर अपने सवार उन पर बिठाना, और हम अपना सबसे कमजोर कप्तान भेजेंगे जो तुम्हें मिटा डालेंगे। कहने का अर्थ है, वो बढ़ चढ़कर बोल रहा था और उन्हें धमकी दे रहा था। उसने कहा, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है, मैं स्थान और लोगों को नाश करता आया हूं। इस प्रकार वो परमेश्वर की निंदा कर रहा था और धमकी दे रहा था। दीवार के पास खड़े लोगों ने कहा, देखो, हमारे साथ इब्रानी में बातें मत करो, हम आरामी समझते हैं। हमसे आरामी में बातें करो और हम हिजकिया को संदेश दे देंगे। अध्याय 18 पद 27। रबशाके ने उनसे कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के वो तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पनाह पर बैठे हैं? उसने इब्रानी में बोलना आरंभ किया। वो उन लोगों को जो दीवार पर बैठे थे इब्रानी भाषा में धमकाता रहा और कहा, हिजकिया की बात मत सुनो, वो कहता है परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, तुम विश्वास मत करना। तुम क्या समझते हो, परमेश्वर तुम्हें हमारे हाथों से बचा लेगा? देवता कहाँ है? तुम जानते हो हमने बहुत देशों को जीता है, उनके देवता उनके लिए कुछ नहीं कर पाए और तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो भी उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि हिजकिया राजा ने ऐसे ही आदेश दिया था कि कोई उत्तर उसे ना देना। इसलिए हिजकिया ने यशया को बुलाने के लिए संदेश भेजा। राजाओं के वर्णन के इस मोड़ पर अच्छा होगा कि अच्छी तरह समझने के लिए इसके साथ यशया की पुस्तक भी पढ़े, क्योंकि यशया हिजकिया राजा के काल में एक प्रभावशाली नबी था। इसलिए उचित जानकारी के लिए आपको यशया पढ़कर इसकी भूमिका समझ लेना चाहिए। दूसरी ओर आप यशया की भविष्यवाणी भी अच्छे से समझ पाओगे। हिजकिया एक अच्छा राजा था जो यशया के समय में था। यशया का एक बड़ा प्रभाव था और हिजकिया सलाह इसी भविष्यद्वक्ता से लेता था।